आज की बात।
दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम मोदी राज में भारतीय मुसलमानों की स्थिति के बारे में बात करेंगे। आशा है आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, हमारे भारतीय समाज में धार्मिक सद्भावनाओं की जड़ें इतनी गहरी हैं कि दुनिया भारत के इस सद्भावनापूर्ण इतिहास की मिसालें पेश करती है। भारत को अनेकता में एकता रखने वाले देश के रूप में जाना जाता है। भारत के इतिहास पर नजर डालने से पता चलता है कि इस देश में हमेशा हर धर्म के लोग आपसी मेलजोल के साथ रहते आए हैं, परंतु भारत जैसे महान देश में मुट्ठी भर जहरीली मानसिकता और दुर्भाग्यवश अंग्रेजों की जी हुजूरी करने वाले लोग नफरत और सांप्रदायिक दुर्भावना के सहारे खासकर देश में हिंदू मुस्लिम के मध खाई गहरी कर सत्ता में जरूर आ गए हैं। वहीं भारत जैसे महान देश में वर्ष 2014 के बाद से काफी बदलाव देखने को मिला है। इसीलिए ये सवाल पूछा जाता है कि क्या नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत में सांप्रदायिक सौहार्द में परिवर्तन आया है। इसी तरह ये भी सवाल होता है कि क्या मोदी राज में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। क्या जानबूझकर भारतीय मुसलमानों को हाशिए पर डाला जा रहा है और क्या मुसलमानों से बदला लिया जा रहा है। यह ऐसे सवाल हैं कि जिन पर 2014 के बाद से काफ़ी चर्चा हो रही है। इस संबंध में अलग अलग ख्याल विचार पेश किए जाते हैं। वैसे इन सवालों के उठने के पीछे एक और भी वजह है, क्योंकि जब वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी दिल्ली की कुर्सी पर बैठे थे तो उन्होंने अपनी पुरानी छवि को मिटाने के उद्देश्य से ऐसे नारे दिए थे कि जिससे ऐसा लगने लगा था कि गुजरात वाले मोदी और दिल्ली वाले मोदी में काफी फर्क है।
बीजेपी बिलीव्स इन सबका साथ सबका विकास,
सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास ही हमारा मूल मंत्र है।
वहीं जब मोदी द्वारा दिए गए नारों और जमीनी सच्चाई की तुलना की जाती है तो दोनों चीजों में काफी अंतर दिखाई देता है। हम इसकी इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये स्वयं नरेंद्र मोदी का ही मंत्र था। वही सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास की बात कर रहे थे। मोदी के राज में क्या सब कुछ ठीक है, इस बारे में स्वयं भारत के लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है।
कार ठीक हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें जो है और भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है।
मोदी जी जो वादा किए हैं गरीबों के खाता में भेजने के लिए पैसा, उसको भेजना चाहिए।
कुछ भी महसूस मुझे नहीं हुआ, मुझे ना मोदी सरकार के नियमों का कोई पालन महसूस हुआ और ना मैं कोई फायदा पाई उसका। हम उनको अपना मतलब संरक्षक चुने हैं उनको, तो उनको भी तो पब्लिक के बारे में देखना चाहिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात।
वहीं एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावा करते हुए थकते नहीं हैं कि जब से मोदी दिल्ली की सत्ता में आए हैं तब से ही देश में विकास शुरू हुआ है, बल्कि मोदी से पहले भारत के इतिहास में कभी भी इतना विकास नहीं हुआ। अगर आपको विश्वास ना हो तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की जबानी सुन लीजिए।
पूरे विश्व ने मोदी जी के नेतृत्व को माना है और भारत की जो आभा है, भारत का जो वर्चस्व है, वो और मजबूत हुआ है पूरे विश्व में। ये इसलिए है क्योंकि मोदी जी एक सशक्त मजबूत नेतृत्व देश को दे रहे हैं। दूसरी बात, जो कार्य 70 साल में नहीं हो पाए क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति होती थी, सांप्रदायिक राजनीति होती थी, भ्रष्टाचार था, वो बड़े काम मोदी जी की सरकार ने किए।
जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता रोहन गुप्ता का कहना है कि मोदी ने देश को केवल जुमले ही दिए हैं।
मैं देश का नागरिक हूँ, प्रधानमंत्री हम सबके। जब आकलन की बात आए तो पूरा देश की जो सिचुएशन होनी चाहिए, जो खुशी दिखनी चाहिए, उससे आकलन होना चाहिए। हर सरकार की जो जो असेसमेंट होनी चाहिए, उन्होंने क्या वादे किए और क्या पूरे किए। 15 लाख की बात करें, काले धन की बात करें, ऐसे हजारों वादे हैं जिन्होंने एक नया नाम दे दिया जुमला। पर जहां तक नियत में खोट हुई, मैं एक ही चीज कहूंगा, जब तक है नियत में खोट, जनता को दे रहे हैं चोट पर चोट। अगर संवेदनशीलता नहीं होगी, अगर आपको कुछ दिखाने के लिए करना है और सही में करना है, उसमें जो फर्क है वो मोदी सरकार में है। परसेप्शन मैनेजमेंट एंड रियलिटी मैनेजमेंट टू आर सेपरेट थिंग्स। मुझे लग रहा है कि ये सरकार ने परसेप्शन मैनेजमेंट में ज्यादा ध्यान दिया और जो रियलिटी है, जो जमीनी हकीकत है, उस पर ध्यान नहीं दिया। उसी का खामियाजा वो दिख रहा है। सरकार का काम होता है जब देश की जनता पे के जख्म लगते हैं देश की जनता को, तब मरहम लगाए, ना कि उस पर नमक रगड़ा जाए। प्लीज संवेदनशील बनिए, देश की जनता को आपके मरहम की जरूरत है। देश की जनता आपसे सिर्फ इतनी अपेक्षा करिए, उनको कॉन्फिडेंस की जरूरत है।
दोस्तों, अब अगर हम बात करें मोदी के उस नारे की जिसमें उन्होंने सबके विश्वास की बात कही थी, तो ये भी नारा सच्चाई से कोसों दूर नजर आता है। ये हमारा नहीं, स्वयं भारतीय मुसलमानों का मानना है और उनसे बात करने पर उनका दर्द छलक उठता है।
तो ऊपर वाले कुदरत निराली है जो हम जिंदा हैं, नहीं तो ये लोग मिटाने की कोशिश करने चाहते हैं। हम मुस्लिम हैं और मुसलमान की वजह से अत्याचार जुल्म हुए हैं।
देश का मुसलमान को अमन चैन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुसलमान को। मुसलमान कभी भी किसी भी सरकार से एक ही चीज का उम्मीद करता है, उसको शांति से रहने दिया जाए।
वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि इस समय भारत में वैसे ही माहौल है कि जैसा दुनिया की साम्राज्यवादी शक्तियों ने बनाया है। एक ओर तो पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों को युद्ध की आग में ढकेला गया और दूसरी ओर आतंकी संगठनों का गठन करके इन्हीं मुस्लिम देशों में रहने वाले मुसलमानों का जनसंहार कराया जा रहा है। वहीं इस्लाम के नाम को आतंकवाद से जोड़कर आम लोगों को इस्लाम से दूर करने की साजिश भी रची जा रही है। इस समय भारत में भी भगवा आतंकवाद पूरे देश को खोखला करता जा रहा है, लेकिन घरों पर बिल्डोजर से लेकर इंकाउंटर तक मुसलमानों का ही किया जाता है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जिनके बारे में बात किया जाना चाहिए, उस पर लिखा जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए भारत के वरिष्ठ पत्रकार जियाउल इस्लाम ने इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए किताब लिखी है। उनका इस बारे में कहना है कि अगर मैंने इस बारे में अपने कलम का इस्तेमाल नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी को वो कैसे जवाब दे पाएंगे।
ये किताब बहुत हद तक मेरे अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, कुछ और लोगों के तजुर्बे के ऊपर बेस्ड है, और मैंने सोचा कि अगर इस टाइम मैंने अपनी कलम का इस्तेमाल नहीं किया तो आगे आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को या उनके बच्चों को मैं क्या जवाब दूं कि जिस समय देश की माइनॉरिटीज के साथ, विशेषकर मुसलमानों और ईसाइयों के साथ बहुत कुछ हक तल्फियां हो रही थी, कुछ जुल्म उन पर हो रहे थे, तो क्या मैं खामोश बैठा था? मैं अपने परिवार के साथ हाली सुखी जीवन जी रहा था या मुझे एक लार्जर पर्सपेक्टिव था अपनी कम्युनिटी का और अपने देश का? तो उस जिम्मेदारी के तहत मैंने इस चीज को लिखा और इसमें एक मेरा अपनी जाती जिंदगी का एक पहलू जुड़ा हुआ है। सन 1992 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ था, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय मैं नोएडा में रहता था और उस समय में मेरे पड़ोस की एक हिंदू फैमिली थी कोहलीस, उनकी घर की जो हेड ऑफ द फैमिली थी लेडी, वो हमारे घर आई। पाकिस्तानी रेफ्यूजीज थे जो कि 1947 में इंडिया आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे घर में रहिए, अगर आप पर कोई हमला होगा तो पहले हम आपके लिए यहाँ पे खड़े हैं। जब मेरे परिवार ने मना किया कि नहीं, हम अपने ही घर में रहना चाहेंगे, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि अगर ऐसी बात है तो कुछ दिन, जब तक कि तनाव बना हुआ है, मैं आपके घर में रात को सोऊंगी और कोई घंटी बजाएगा तो मैं दरवाजा खोलूंगी। तो इतना स्नेह, इतना प्यार हमें उन लोगों से उस वक्त मिला था, जबकि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का पूरा स्टर चल रहा था। रोज शाम को नोएडा में नारे लगाए जाते थे, بابری مسجد کے متعلق اور ہندو مسلمان کے جو پروکیٹو سلوگنز ہوتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں میں نے دیکھا 2020 میں جب کووڈ تھوڑا کم ہوا اور ایودھیا میں بھومی پوجن ہوا، تو میری کالونی میں بہت لوگوں نے بہت پروکیٹو سلوگنز لگائے۔ جے شری رام تو صرف ان کے لیے ایک ویپن کے طریقے سے رہ گیا تھا، کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ اس کالونی میں کوئی مسلم یا کرسچن بھی ہو سکتا ہے جس کو کہ شاید ہمارے اس بیہیویئر سے کچھ ٹھیس۔ تو 1992 سے 2020 تک کا جو میرا سفر تھا، مجھے لگتا ہے وہ بہت حد تک بھارت کے مسلمانوں کے سفر کو بھی درشاتا ہے۔
اس بات میں کوئی سندیہ نہیں ہے کہ 2014 سے پہلے اور 2014 کے بعد کے بھارت میں کافی بدلاؤ آیا ہے، کیونکہ جس طرح کھلے عام مسلمانوں کی ہتیا کرنے کی بات کی جاتی ہے اور عام لوگوں سے ہتھیار اٹھانے کی اپیل کی جاتی ہے، لیکن ایسا کرنے والوں کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی کاروائی نہیں ہوتی، تو یہاں یہ سوال اٹھنا ضروری ہے کہ جس طرح ہتھیاروں اور بلاتکاریوں کا بھارتی جنتا پارٹی سے جڑے ہوئے سنگھٹن اور بھگوا آتنکی گٹ سمرتھن کر رہے ہیں، ایسے میں ہتھیاروں اور بلاتکاریوں کو کیا پروتساہن نہیں ملتا ہے؟ آخر مسلمانوں کو اتنا کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ مسلم نام کے شہروں، قصبوں اور سڑکوں تک کے نام بدلے جا رہے ہیں، کیا یہ مسلمانوں کو مانسک روپ سے پریشان کرنے میں نہیں آتا ہے؟ بھارت کے ورشٹھ پترکار اور لیکھک ضیاء الاسلام نے اس بارے میں بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، جس کے بارے میں وہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں،
جہاں تک چیپٹرز کے ڈویژن کی بات ہے، اس میں میں نے پہلا میرا ایم تھا کہ جو پولیٹیکل انویزیبلائزیشن ہو گیا ہے مسلمز کا، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، نہ کہ صرف یہاں تک کہ بھاجپا کی سرکار یا بھاجپا پارٹی کے طور پہ مسلمانوں کو ٹکٹ دینے سے کتراتی ہے، خالی وہاں تک سیمت نہیں رکھا جائے۔ ساتھ ساتھ اسی پرکار سے جیسے ایسا لگتا ہے کہ دیش میں جو بھی مسلمان شہر ہیں ان کا نام صرف اس لیے بدلا جا رہا ہے کہ ان کا نام کسی مسلمان کے اوپر ہے یا ایون اردو کے اوپر بیسڈ ہے، ہسٹری کو پورا بدلا جا رہا ہے۔ اور جو جو بھارت کے میڈیول انڈیا کے مدھیہ کالین میں جو مسلمانوں کا پازیٹیو کنٹریبیوشن تھا، اس کو انڈر پلے کرا جا رہا ہے یا پورے طریقے سے مٹایا جا رہا ہے، تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا تھا۔ اس کے بعد جو روز مرہ کے ہمارے سامنے حادثے آتے ہیں کہ کبھی لنچنگ ہوئی دادری میں، تو کبھی الور میں، کبھی غازی آباد میں، کبھی رائے گڑھ میں، تو ایک لمبا چیپٹر اس میں ان چیزوں سے متعلق ہے۔ ساتھ ساتھ دوسرا چیپٹر جو ہے، ایک جو کہ میرے لیے خود بہت درد کی چیز تھی، وہ تھا یہ ریکارڈ کرنا سارے مسجدوں پہ حملوں، اور جب نارتھ ایسٹ دہلی میں حملے ہوئے مسجدوں پہ، 19 پلیسز آف ورشپ پہ حملے ہوئے تھے درگاہ کو انکلوڈ کر کے، تو ہر جگہ پہ نعرہ ایک بہت عام تھا کہ ہر مسجد بابری بنے گی، تو کہیں نہ کہیں پہ ان لوگوں کو، غنڈوں کو ایک انسپریشن مل رہا تھا 1992 سے۔
ملا کر بھارت میں جیسے جیسے چناؤ نزدیک آ رہے ہیں، ویسے ویسے آپسی ٹکراؤ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دھرم کے نام پر یوواؤں کی بھاوناؤں کو بھڑکانے کا کام تیز ہو چکا ہے، وکاس اور وشواس بہت پیچھے چھوٹ چکا ہے، اسی لیے ایسے سبھی بھارتیوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے جو دیش کے پرتی بنا کسی بھید بھاؤ کے نشٹھا رکھتے ہیں اور جن کا ادیش پیچھے چھوٹے دیش کے وکاس اور وشواس کو آگے لانا ہے۔ تو دوستوں، کاریکرم کا سمے اب یہیں سماپت ہوتا ہے، ہمیں انومتی دیجیے۔